प्रस्तुत है नाटक ये दूरियां। लेखक निर्देशक हैं माइकल हॉजेस। अच्छा, क्या ला रहे हैं आप बाजार से?
अब जो ताजी और अच्छी सब्जी मिलेगी वही ले आऊंगा।
ठीक है, आते समय रमजान की चक्की से 20 किलो आटा और बनिए से राशन भी लेते आना।
तुम भी है ना, ठहरे ठहर के काम बताना, सभी काम एक बार में ही मत कहना।
अरे आप तो जानते ही हैं कि इस महीने का राशन भी लाना है, दो दिन से दूसरे कामों में से भूलती जा रही थी। आज आपने बाजार जाने को कहा तो याद आ गया मुझे।
मानता हूँ तुम्हारी बात, मगर इस उम्र में कोई भी काम एकदम करना पड़े तो तकलीफ होती है, इसलिए एक दो दिन पहले से तो तुम कह दो तो मूड बन जाता है कि ये काम करना है। तुम्हें तो पता है कि नौकरी के साथ साथ घर और बाहर के सभी काम मुझे ही करना पड़ते हैं।
मैं समझती हूँ इस बात को, मगर क्या करे, मजबूरी ठहरी।
रिटायर होने में अब 2 साल ही बचे हैं। मैं जानता हूँ कि आजकल रिटायर होने वाले इतने बूढ़े भी नहीं हो जाते और न लगते हैं, लेकिन फिक्र आदमी को वक्त से पहले बूढ़ा बना देती है।
मैं जानती हूँ कि बच्चों के होते हुए भी हम बिन औलाद वालों की तरह रहते हैं। आपको ये बात सालती है और क्या।
अपनी अपनी किस्मत है जया।
बेटी तो शादी करके अपने ससुराल चली गई, उसे तो जाना ही था।
हाँ, हर बेटी को अपना ससुराल जाना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। श्रुति इसी कारण शादी भी नहीं करना चाहती थी कि उसके जाने के बाद हम दोनों बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र तो पहले ही शादी करके हमें अकेला छोड़कर चला गया था।
आप सही कहते हैं जी, हमें श्रुति को जबरदस्ती शादी के लिए तैयार करना पड़ा था। उसको तो खैर एक न एक दिन जाना ही था, लेकिन नरेंद्र को तो अपना फर्ज निभाना था ना।
किस्मत के आगे भला किसका जोर चलता है।
ये सब किस्मत का नहीं, हमारी बहू श्वेता का किया कराया है। वही नरेंद्र को सिखा पढ़ाकर यहाँ से अपने साथ ले गई, वरना नरेंद्र तो अच्छा भला यहाँ नौकरी कर ही रहा था ना।
मगर वे तो कहते थे कि उनका जबलपुर ट्रांसफर हो गया।
कहने का क्या है, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, बात तो उस कहे को समझने की होती है।
तो फिर नरेंद्र का ट्रांसफर वो बैंक की तरफ से ही किया गया ना?
आपने भी इतनी उम्र कर ली, मगर भोले के भोले ही रहे। अरे ट्रांसफर खुद नहीं कराया जा सकता क्या?
कहती तो तुम सही हो, मगर नरेंद्र ऐसा क्यों करने लगा?
नरेंद्र बेटा किसका है?
हमारा।
तो उसमें आपके भी कुछ गुण तो आने ही हैं। जैसे आप अपनी पत्नी की यानी मेरी बात सुनते हैं, वैसे ही वो भी अपनी पत्नी की बात सुनता और मानता है। अरे आपने इस बात पर गौर नहीं किया कि नरेंद्र का ट्रांसफर कहाँ हुआ है? जबलपुर, और जबलपुर से सीमा का मायका केवल 1 घंटे के सफर की दूरी का तो है।
तो
क्या अब उसे जब चाहे अपने मायके जाने में कोई अड़चन नहीं है, न वहाँ हमारी कोई रोक टोक है। अड़चन है और ना ही अब उसका मायका वहाँ से दूर है। जब चाहे खुद चली जाए, जितने दिन चाहे रहे, और जब चाहे उसके मायके वाले आ जाए, जितने दिन चाहे रहे, कौन बाधा है, किसका लिहाज है।
लेकिन यहाँ हमने ही कौन सा उसके ऊपर कोई बंदिश लगा रखी थी, वह जैसा चाहती थी करती थी और रहती थी।
उसी बात का तो उसने भरपूर फायदा उठाया है।
लेकिन उसे ये फायदा तो तब उठाना था जब हम उस पर कोई पाबंदी लगाते।
पाबंदी लगाने पर आदमी दो ही काम करता है, एक वो अपनी सीमाएं जानता है और उन्हीं सीमाओं में बंधकर रहता है, दूसरा या फिर वो अपनी सीमाएं तोड़ देता है। लेकिन पाबंदी लगे होने पर वो अपनी सीमाएं तोड़ने से पहले उसके परिणाम के बारे में विचार तो जरूर ही कर लेता है ना। लेकिन पाबंदी न होने पर वो अपनी आजादी की सीमा पार करने में देर नहीं करता।
और यहाँ तो हमने उसे पूरी आजादी दे रखी थी, किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी उस पर नहीं थी।
वही तो मैं कह रही हूँ, और उसने उसी का तो फायदा उठाया है। उसने भी अपने को मिली आजादी की सीमा बढ़ा ली और क्या।
लेकिन कम से कम नरेंद्र को तो सोचना था। मैंने तो कभी सोचा भी न था कि नरेंद्र इतना खुदगर्ज निकलेगा।
दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं जी, एक वो जो पैदाइशी स्वार्थी होते हैं और एक वो जो स्वार्थी बनाए जाते हैं या किसी लालच के कारण स्वार्थी बन जाते हैं। और हमारा नरेंद्र भी बना या बनाया गया स्वार्थी है और क्या।
उसने तो ये भी नहीं सोचा कि हम दोनों अकेले उम्र की ढलान पर हमारा होगा क्या, कैसे बीतेगी हमारी बाकी की जिंदगी।
दिल क्यों छोटा करते हैं आप, दुनिया में हमारी तरह और भी तो लोग हैं ना।
क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली देती हो तुम? क्या ये बात तुम्हारे दिल में कांटा बनकर दर्द पैदा नहीं करती कि तुम्हारा बेटा तुमसे दूर है? तुम्हारी ये खामोशी इस बात का सबूत है कि अपने बेटे के दूर रहने का दर्द तुम्हें भी सालता है। आखिर माँ हो तुम।
सब किस्मत की बात है, भाग्य पर किसका जोर चलता है भला।
इस उम्र में भौतिक और आत्मिक रूप से अकेला रहना हम दोनों को ही अखरता है। अब वो सारे काम भी मुझे ही करना पड़ते हैं जो इस उम्र में मैं बड़ी मुश्किल से ही कर पाता हूँ।
तभी तो कहते हैं कि बुढ़ापे में औलाद ही माँ बाप का सहारा होती है, मगर यहाँ तो हम खुद ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं।
अब जैसे गैस की टंकी लाने का काम ही देख लो, जब गैस वाला टंकी नहीं लाता या गैस एकदम से खत्म हो जाती है तब मुझे ही वो भारी भरकम गैस की टंकी लाना पड़ती है।
आप सही कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास नौकरी से समय नहीं है तो फिर हमें किसी पड़ोसी का मुंह देखना पड़ता है।
पड़ोसी भी तभी काम करेंगे ना जब उनके पास समय होगा, तब तक मुंह लटका कर हम बैठे रहते हैं।
और सबसे बड़ी परेशानी तो तब खड़ी हो जाती है जब बीमार होते हैं। अभी पिछले महीने ही आप पीलिया के कारण अस्पताल में भर्ती थे, तब कितनी मुश्किलें हो गई थी हमको।
सही है, तुम अस्पताल और घर के बीच दौड़ लगाती रही थी, तुम्हारा एक पैर घर में और एक अस्पताल में।
वहां तक भी ठीक था, दिन तो कैसे भी निकाल लेते थे, लेकिन रात को जब हम दोनों ही अस्पताल में रहते थे तब हमें घर की कितनी चिंता रहती थी। आजकल दिन दहाड़े चोरियां हो जाया करती हैं, तो फिर रात का तो डर लगा ही रहता था हमें।
और मेरे अस्पताल से घर आने के बाद नरेंद्र और बहू ने आकर मुझे देखने की रस्म भी निभाई दी थी ना।
घर पर आने के बाद देखने से क्या मतलब, तबीयत देखना ही थी। जब देखते अस्पताल में थे तुम तब तभी आकर देखते ना।
अब जो भी हो वो यहाँ से ट्रांसफर करा के चले गए, और मैं तो यही सोचता रहता हूँ कि नरेंद्र से हमारे हालचाल पूछने के लिए फोन भी नहीं होता। कभी कभार महीने 15 दिन में हमने फोन कर दिया तो हमारा हालचाल पूछ लेता है और हमारे पूछने पर अपने हालचाल बता देता।
सब श्वेता की माँ का सिखाया पढ़ाया है।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बहू को उसकी माँ ने कुछ सिखाया पढ़ाया है? क्या तुमने भी अपनी बेटी श्रुति को सिखा पढ़ाकर ही ससुराल रवाना किया?
मैंने तो अपनी बेटी को कुछ सिखा पढ़ाकर नहीं भेजा था, क्योंकि मैं जानती हूँ जो माएं ऐसा करती हैं वे अपनी बेटी की ही सुखी गृहस्थी में आग लगाने का काम करती हैं।
तुम बिल्कुल ठीक कहती हो जया, बेटी और जवाई को अपनी गृहस्थी अपने ढंग से चलाने देना चाहिए, और कोई भी सलाह तभी देना चाहिए जब बेटी खुद कोई सलाह मांगे, और सलाह मांगने पर भी हमेशा बेटी को सही सलाह ही देनी चाहिए बजाय स्वार्थी सलाह देने के।
बिल्कुल, क्योंकि गृहस्थी बेटी की है और वो बेटी को ही चलाना है। गृहस्थी के अच्छे और बुरे परिणाम उसे ही तो भोगना है, और वहीं उसे जीना है और वहीं मरना है। ऐसी गलत सलाहों का दोहराता हुआ इतिहास में खूब देख चुकी हूँ जी।
हर माँ अगर अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में दखल देना बंद कर दे तो उसकी बेटी का गृहस्थ जीवन सुखी हो जाए, लेकिन अगर माँ अपनी बेटी की ही गृहस्थी में दखल दे भी तो पहले तो बेटी को ही अपनी माँ को ऐसा करने से रोक देना चाहिए, और अगर फिर भी माँ ना माने तो बेटी को चाहिए कि वह अपनी माँ का कहा ना करे।
काश अपनी बेटी की गृहस्थी में दखल देने वाली माँ ये बात समझ ले।
कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि काश हम बिना बेटे के ही होते। अभी भी तो हम बिना बेटे के ही हैं, बेटा है मगर नाम के लिए।
सच में बड़ा दुख होता है, पाल पोस कर इतना बड़ा करो और बेटा बहू के संग चल देता है, फिर उसके माँ बाप का कुछ भी होता रहे। मैं तो इस मामले में हमेशा बहू को ही दोषी ठहराऊंगी।
और अगर बेटा खुद ही माँ बाप की सेवा न करना चाहे, उन्हें संभालना न चाहे, तो ये तो बेटे की ही गलती ही कहलाएगी ना।
मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन अगर बेटा ऐसा करे भी तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि अपने पति को समझाए उस हालत में, जबकि उसके पति के सिवा उसके सास ससुर का और कोई सहारा भी ना हो।
बात तो तुम्हारी सही है।
मेरा तो अपनी जिंदगी का अनुभव रहा है ये।
क्यों, तुम्हारा कैसा और क्या अनुभव रहा?
यही कि मैंने भी तो आपको हमेशा अपने ससुराल और सास ससुर से दूर रखने की कोई कोशिश की है।
मेरे तो फिर भी दो छोटे भाइयों ने माँ और पापा को संभाल लिया था। क्या तुम्हें आज अपनी गलती का एहसास हो रहा?
मुझे तो अपनी गलती का एहसास आपकी माँ और पापा के गुजरने के बाद से ही हो गया था, मगर मुझ में कभी इतनी नहीं रही कि आपसे अपनी गलती की माफी मांग सकूं। शायद आज मांग सकूं, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो।
पुरानी बातों को छोड़ो जया, मैं तो तुम्हें कब का माफ कर चुका हूँ, वरना क्या आज हम इतने प्यार से साथ में रहते?
सचमुच में बहुत शर्मिंदा हूँ, आपने मुझे माफ कर दिया ये सुनकर मेरे दिल पर से ये बोझ हट गया।
और मुझे भी खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। लाओ राशन की लिस्ट, रुपया और थैला ले आओ, मैं बाजार हो आता हूँ।
आओ दीपा आओ।
क्या हो रहा है, क्या बात है, तुम लेटी हुई हो? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना?
हाँ जरा तबीयत ठीक नहीं है।
क्या हो गया?
अरे बुखार आ गया था।
कब से?
4 दिन हो गए।
अरे तो तुमने बताया नहीं, अब हम पड़ोसियों को भी तुम पराया समझने लगी हो क्या? डॉक्टर को दिखाया तुमने?
हाँ इनके साथ गई थी, डॉक्टर ने टेबलेट लिखा था, ले रही हूँ। बुखार अब नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी कमजोरी लगती है, इसलिए थोड़ा लेट गई थी।
मैं भी बस अभी सुबह ही बेटी के पास से आई हूँ।
अच्छा।
उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सो देखने चली गई थी। तुमने घर पर भी नहीं बताया, वरना ये या मेरे बेटे बहू तो तुम्हारी तबीयत के बारे में बताते ही।
अरे जरा सा बुखार ही तो था, इसलिए मैंने बताना ठीक नहीं समझा, तुम लोगों को बेकार ही तकलीफ होती मेरे कारण।
तुम भी कमाल की बात करती हो, हम लोगों को क्या तकलीफ होती? मेरे पति हैं, 2 बेटे हैं और 1 बहू है, इतने सारे लोग, क्या तुम अकेली के लिए कुछ नहीं कर सकते थे? प्रकाश भैया को तो खाने की तकलीफ हुई होगी ना, और तुम्हें भी।
तकलीफ काहे की दीपा, तुम तो जानती ही हो हमारे बेटा बहू के जाने के बाद हमारे साथ तो ये लगा ही रहता है, इसलिए इनको भी कच्चा पक्का कुछ बनाना आ ही गया है, बना लेते हैं।
ये तुम गलत करती हो जया, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम केवल पड़ोसी ही नहीं सहेलियां भी हैं? मेरे पति और प्रकाश भैया में भी अच्छा दोस्ताना है, फिर भी हम अपनों के बीच में तुम झिझक क्यों लेती हो?
अरे दीपा क्यों तुम
अब तुम मुझे ये बताओ कि हमारे घर में जहाँ 5 लोगों का खाना बनता है तो क्या जरूरत पड़ने पर तुम और 2 लोगों का खाना नहीं बना सकते?
अरे फिर भी 2 लोगों के बढ़ने से परेशानी तो होती है ना।
फिर तुमने परेशानी की बात की, अपनों से अपनों को कभी परेशानी होती है क्या? तुमने गुलाब के फूल को कांटों के बीच भी मुस्कुराते हुए देखा ना? वह कांटों के बीच भी इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि कांटे भी उसके अपने ही हैं, और अपनों से भला किसी को क्या और कैसी परेशानी?
ये तो तुम्हारी महानता है दीपा, जो तुम गैरों को भी अपना मानती हो, और एक हमारा अपना बेटा है जो हमें गैर समझता है।
मैं एक माँ होने के नाते तुम्हारा दर्द समझती हूँ जया, धीरज रखो, एक ना एक दिन नरेंद्र भी लौट ही आएगा।
अच्छे रहने पर और अपने काम में लगे होने पर नरेंद्र की याद कम ही आती है, लेकिन बीमारी और अकेलेपन में वो बहुत याद आता है दीपा। अब ये बीमार होते हैं तो मैं इनकी सेवा संभाल कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे खुद ही अपनी सेवा संभाल करनी पड़ती है, ये भी ऑफिस से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते ना।
तुम सही कहती हो,
जब ये घर पर होते हैं तो मेरे साथ साथ घर को भी संभाल लेते हैं, फिर तुम तो जानती हो अब उम्र ढलान पर है।
सचमुच जया, बेटे के पास न होने पर कितनी परेशानी होती है इस उम्र में, ये तुम्हें देखकर जान गई हूँ मैं। भगवान किसी माँ बाप और उनके इकलौते बेटे के बीच ये दूरियां ना दे।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता है दीपा कि अपने बेटे से दूरी का कारण भी मैं खुद ही हूँ, और इतिहास अपने आप को दोहराता रहा है।
ये तुम क्या कह रही हो जया?
हाँ दीपा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया, बरसों पहले मेरी सास भी अपने बेटे यानी मेरे पति के लिए उसी तरह तड़पती होगी जिस तरह आज मैं अपने बेटे के लिए तड़पती हूँ। भले ही उनके 2 बेटे और थे, लेकिन बेटा तो बेटा होता है ना, और मैंने हर समय अपनी माँ के कहने में आकर अपने पति को उनकी माँ से दूर ही रखा था।
तुमने ऐसा क्यों किया था जया?
अपने स्वार्थ के कारण, मैं अपने पति के साथ अलग, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से रहना चाहती थी दीपा, और मैंने वही किया भी। शायद उसी बात की सजा आज भी मुझे मिल रही है, एक माँ के रूप में मिल रही है।
मगर ये संयोग भी तो हो सकता है ना जया?
मानती हूँ दीपा कि ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन मेरा अपराधी हृदय तो मुझसे यही कहता है कि वक्त आज मेरे साथ उन्हीं घटनाओं को दोहरा रहा है जो कभी मेरी सास के साथ घटी थी।
हो भी सकता है कि ये सच हो।
वक्त आज मुझे वही महसूस करा रहा है जैसा कभी मेरे कारण मेरी सास ने महसूस किया होगा दीपा। आज मैं अपनी सास के उस दर्द को महसूस करती हूँ जो कभी उन्होंने महसूस किया होगा।
सच है जया, बेटे को कभी अपनी माँ से दूर करने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए, वरना अरमानों से बेटे को पाली माँ का दिल टूट जाता है।
मैं तो सभी बहुओं को यही कहना चाहती हूँ कि अपने अपने पति को उनकी माँ से दूर कभी कभी न करें, कोशिश भी न करें, वरना मेरे जैसे उन्हें भी माँ बनने पर उसी तरह का दर्द सहन करना पड़ सकता है, उन्हें भी अपने बेटे के लिए उसी तरह से तड़पना पड़ सकता है जिस तरह से आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प रही हूँ।
तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है जया, कि एक माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन मेरा दिल कहता है जया कि नरेंद्र एक दिन जरूर लौट कर आएगा, देखना तुम देखना, और माँ बेटे के बीच की ये दूरियाँ मिट ही जाएगी।
भगवान करे तुम्हारे दिल का कहा सच हो। अभी आपने सुना नाटक ये दूरियां। भाग लेने वाले कलाकार थे अपर्णा सिंह, प्राची जैन, माइकल हॉजेस।